अभिमान जिद करके आशिका को शॉपिंग के लिए लेकर आया था। अभिमान ने कभी नहीं सोचा था उसकी ये जिद आशिका के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। जब आशिका ट्रायल रूम से बाहर निकली तब सलीना ने उसे देख लिया था। सलीना जल्दी से आशिका के पास आई। अब आशिका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सलीना उसे खींचते हुए जबरदस्ती तृप्ति के पास लेकर जा रही थी। अभिमान सलीना के पीछे आते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सलीना किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। ऊपर से वह स्काई और तृप्ति को कॉल करके वहां बुला रही थी ताकि आशिका फिर से उनकी नजरों से ओझल ना हो जाए। सलीना ने अपना मोबाइल कान के लगाया। उसने चलते हुए आशिका की तरफ देखा और बोली, अब हम तुम्हें अपनी नजरों से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं करेंगे। अभी मॉम को कॉल करके यहाँ बुला रही हूँ और वो तुम्हारे होने वाले डियर हस्बैंड को भी यहाँ लेकर आएगी। फिर हम देखते हैं कि तुम हमें कैसे धोखा देकर भागती हो। इससे पहले कि कॉल कनेक्ट होता, अभिमान ने सलीना के हाथ से मोबाइल छीना और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसकी इस हरकत पर सलीना उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। सलीना ने अभिमान को घूरते हुए कहा, सोचा नहीं था कि तुम जैसे अच्छे घरों के लड़के भी ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाते होंगे। इससे दूर रहो। दिखने में जितनी इनोसेंट लग रही है, रियल लाइफ में वैसी बिल्कुल नहीं है। न जाने अब तक कितने लड़कों के साथ। सलीना की बात पूरी होने से पहले ही अभिमान ने उसे बीच में काटते हुए सख्त लहजे में कहा, माइंड योर वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी एम्प्लॉई है और तुम इस तरह से इसे मेरे काम के बीच से घसीटकर नहीं ले जा सकती हो। स्टिल, तुमने जबरदस्ती की तो आई विल कॉल पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही सलीना थोड़ी सकपका गई थी। उसने थूक निगला और खुद को शांत करके नरम लहजे में कहा, मैं इसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आप पूछ सकते हैं, हम फैमिली है। ओ रियली, तुम दोनों फैमिली हो? तुम्हारा एटीट्यूड मैंने थोड़ी देर पहले देख लिया था। चुपचाप इसका हाथ छोड़ो। हम यहाँ किसी प्रोजेक्ट के चलते आए थे। अगर तुमने मेरे काम के बीच में इंटरफेयर किया तो अच्छा नहीं होगा। अभिमान सलीना से बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा था जैसे वो बाकी लोगों से करता था, एकदम प्रोफेशनल और सख्त लहजे में। लेकिन आज तो संडे है और संडे को कौन सा काम होता है? मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कोई बेहतर काम करती होगी। ये तो ठीक से पढ़ी लिखी भी नहीं है। सलीना ने आशिका की तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, मानो उसे उससे घिन आ रही हो। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा काम कर रही है। मैंने इसे एडवांस सैलरी दी है, तो किसी भी हाल में तुम मेरा काम पूरा होने से पहले इसे यहाँ से ले जा नहीं सकती हो। चलो अब जाओ और अपना ये फैमिली ड्रामा बाद में लगाना, अभिमान ने जवाब दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जब सलीना आशिका से बदतमीजी से बात कर रही थी। ऊपर से वो उसे नीचा गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? अगर आपको इससे काम है तो मैं बीच में नहीं आऊंगी, पर साथ ही मैं इसके पास रहूंगी। आई डोंट नो इसने आपको क्या कहा है, बट इसकी वजह से हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है और अब मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर इसने आपसे एडवांस पेमेंट लिया भी है तो इसके हस्बैंड आपको डबल पे कर देंगे। ही इज़ वेरी रिच, सलीना ने कंधे उठाकर कहा। वो अभी भी आशिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आशिका ने परेशानी में अपने सिर पर हाथ रखा। उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी, ऐसे में सलीना को टालना नामुमकिन था, पर अभिमान के होते सलीना आशिका को वहां से ले जा नहीं सकती थी। आशिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे अभिमान सलीना को टालने के लिए एफर्ट्स कर रहा था। अभिमान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर मेरा आज का काम हो जाए, मैं इसे जाने दूंगा। फिलहाल के लिए हमें जाने दो, बाद में तुम अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, मुझे अपना नंबर दे दो। वैसे भी तुमने कहा था कि डेस्टिनी हमें बार बार मिलवा रही है, तो हो सकता है कि उसने जरूर कुछ सोचा होगा हमारे बारे में। बोलते हुए अभिमान ने सलीना को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। सलीना के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अभिमान की उन नजरों का मतलब समझ सकती थी, तो वहीं आशिका हैरान थी कि अचानक अभिमान उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। फिलहाल उसके लिए यही काफी था कि अभिमान उसे वहां से बचाकर लेकर जा रहा है। अभिमान और सलीना एक दूसरे से नंबर शेयर कर रहे थे। दूसरी तरफ इशिका घर पर रहते हुए बोर हो गई थी। दिशांक को उसने किसी काम के चलते बाहर भेजा था। दोपहर के लगभग एक बजे के करीब इशिका के घर की डोरबेल बजी। उसे लगा दिशांक वापस आया होगा, तो वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने चली गई। थैंक गॉड, पहली बार उसने कोई काम टाइम पर किया है। हर बार उसे बार बार कॉल करके पूछना पड़ता था कि वापस कब आएगा। अजीब बात है, एक घंटे में ही सब कर दिया। खुद से बड़बड़ाते हुए इशिका ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। सामने वसुधा खड़ी थी। हालांकि अभिमन्यु इशिका की सिक्योरिटी के चलते उसके घर से ही थोड़ी दूर एक वैनिटी वैन के अंदर रह रहा था, पर उसे किसी मीटिंग के चलते जाना पड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए वसुधा अभिमन्यु की दादी थी, तो उन्होंने भी उन्हें जाने से नहीं रोका और ना ही अभिमन्यु को इन्फॉर्म किया था। अपने सामने एक अनजान बूढ़ी औरत को देखकर इशिका ने आंखें छोटी की और पूछा, आपको किससे मिलना है? क्या मैं आपको जानती हूँ? इशिका ठीक थी। ये देखकर वसुधा ने पहले राहत की सांस ली थी, लेकिन अब जब इशिका ने उसे पहचाना नहीं था तो वसुधा के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए थे। वो पहले भी इशिका के घर इसी तरह बिना बताए पहुंच गई थी। इस समय अल्जाइमर के चलते वसुधा को ठीक से बातें याद नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं भूली थी कि इशिका उसकी बहू है। आज उसकी वही बहू उसे पहचान नहीं रही थी। वसुधा आंखों में नमी लिए प्यार भरे लहजे से उसे देख रही थी, तो वहीं इशिका उनके कोई जवाब नहीं देने पर वापस बोली, क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हैं? आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई थी, वसुधा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या आपकी बहू यहीं कहीं आसपास रहती है? शायद आपको एड्रेस में कन्फ्यूजन हो गया होगा। आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ आती हूँ। अपनी आदत के मुताबिक इस बार भी इशिका मदद करने से पीछे नहीं हट रही थी। मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ और तुम ही मेरी बहू हो। बहू, क्या तुम सच में उस लड़के को भूल गई हो? वसुधा ने हैरानी से पूछा। आपको कोई गलत फहमी हो गई है, दादी मेरी शादी नहीं हुई है। आप किसी लड़के की बात कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप बस मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए या किसी फैमिली मेंबर का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ, इशिका ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर उसे अपनी बहू क्यों बोल रही थी। इससे पहले कि वसुधा आगे कुछ बोलती, अचानक से नक्श वहां पहुंच गया था। नक्श ने वसुधा को पकड़ा और इशिका से कहा, आई एम रियली सॉरी इशिका, ये मेरी बड़ी दादी हैं और इन्हें अल्जाइमर है। मेरे चाचू मिस्टर अभिमन्यु राजवंश, जिनसे तुम हॉस्पिटल में मिली थी, उनकी वाइफ लंदन में रहती है। बड़ी दादी कब से उसके आने का इंतजार कर रही हैं, तो उन्हें मेरी आंटी की उम्र की हर लड़की अपनी बहू नजर आती है। नक्श के इस तरह बीच में आने पर वसुधा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, यही मेरी बहू है, मेरे अभिमन्यु की पत्नी, और तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, तुम्हें तो निकाल दिया था ना। दादी, मुझे कोई क्यों घर से निकालेगा, आखिर मैं राजवंश खानदान का वारिस हूँ, नक्श ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो इशिका की तरफ देखकर बोला, देखा ही नहीं, इस तरह कन्फ्यूजन होता रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें यहाँ से घर ले जाऊंगा, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आता हूँ इशिका।
इशिका ने नक्श की बात पर हामी भरी। वसुधा इशिका से बात करना चाहती थी, लेकिन नक्श जबरदस्ती उन्हें वहां से ले गया। थोड़ा दूर आने पर वसुधा ने नक्श को खुद से दूर धकेला और उस पर गुस्से में बिफरते हुए कहा, तुमने मेरी बहू के सामने झूठ क्यों बोला? मेरे अभिमन्यु की पत्नी वही है, तुमने ये क्यों कहा कि उसकी पत्नी लंदन में रहती है? उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाना चाहते हो तुम नक्श? मैं अभिमन्यु को सब बता दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, इशिका की याददाश्त चली गई है और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया है, ऐसे में आप उससे ये कैसे कह सकती हैं कि वो अभिमन्यु चाचू की वाइफ है? उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? नक्श ने अपनी सफाई में कहा। मैं खुद देख लेती, लेकिन तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुमने उसके सामने अभिमन्यु की पत्नी किसी और लड़की को बताया है, इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, वसुधा बोली। दादी, ये सब टेम्प्ररी है, जब उसे सब याद आएगा तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या कहा था, मुझे जो समझ आया मैंने बोल दिया, चलिए अब घर चलते हैं, नक्श बोला और वसुधा को वहां से ले जाने लगा, लेकिन वसुधा ने उसे खुद से दूर धकेल दिया था। नक्श जहां वसुधा को मनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं इशिका अभी भी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले भी मेरे साथ हो चुका है? मैं इन दादी से मिल चुकी हूं और ये इसी तरह मुझे बहू कहकर बुलाती थीं। इशिका ने अपनी आंखें बंद की तो उसके दिमाग के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे थे, जहां वो वसुधा को लेकर जा रही थी और सामने अभिमन्यु खड़ा था। इशिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सर को झटका। जरूर ये दादी पहले भी मुझे बहू कहते हुए यहाँ आई होगी और मुझे याद नहीं आ रहा। नक्श बिल्कुल ठीक कह रहा था, इन दादी की बीमारी की वजह से ये किसी को भी अपनी बहू बोलने लगती हैं। मिस्टर राजवंश को अपनी दादी का ख्याल रखना चाहिए। इशिका ने इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अभिमन्यु अपनी मीटिंग से फ्री हुआ और उसने CCTV फुटेज में सब कुछ देखा, तो उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वसुधा का इशिका से मिलना लाजमी था, लेकिन जिस तरह से नक्श बीच में पड़ा और वो जबरदस्ती उन्हें वहां से लेकर गया, ये अभिमन्यु को कभी बर्दाश्त नहीं था। इशिका की हेल्थ के चलते मैंने खुद को कंट्रोल में रखा है नक्श राजवंश, लेकिन मेरे इस पेशेंस का नाजायज फायदा भी मत उठा लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के बीच में आने की और इशिका के सामने उल्टी सीधी बातें कहने की? लगता है फिर से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का टाइम आ गया है, अभिमन्यु सर्द आवाज में बोला और अपनी गाड़ी सीधे राजवंश विला में ले जाने लगा, जहां वसुधा को छोड़ने के बहाने नक्श वापस घुस आया था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और सलीना ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। आशिका को वहां से ले जाने के लिए अभिमान को सलीना के साथ प्यार से पेश आना पड़ रहा था। वहीं सलीना भी खुश थी कि उसे अभिमान के नंबर मिल गए थे। नंबर एक्सचेंज करने के बाद अभिमान आशिका को वहां से ले जाने लगा। आशिका ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से सलीना ने कहा, इस बार भागने की कोशिश मत करना, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम किसी भी देश में चली जाओ लेकिन अपनी शादी और उस इंसान से बच नहीं सकती हो, आशिका सिंघानिया। जैसे ही सलीना ने आशिका सिंघानिया नाम लिया, आशिका के कदम वहीं रुक गए थे, तो वहीं अभिमान को भी एक झटका सा लगा। वो आशिका की तरफ हैरानी से देख रहा था, ये नाम उसके लिए नया नहीं था। उसकी पत्नी का नाम भी आशिका सिंघानिया था, और न जाने क्यों अब सलीना भी ऐश को उस नाम से बुला रही थी।